प्रश्न 79 संकलन त्रय प्रसंगवश यहाँ पर प्राचीन यूनान के नियमों में से संकलन त्रय के नियम का उल्लेख कर देना अनुपयुक्त न होगा। प्राचीन नाटकों में स्थल काल और कार्य की एकता की ओर अधिक ध्यान जाता था। वे चाहते थे कि जो घटनाएं नाटक में दिखाई जाएं, उनका संबंध एक ही स्थान से हो, या नहीं कि एक दृश्य आगरा का हो तो दूसरा कलकत्ता का। इसी को वे स्थल की एकता कहते थे। दूसरी बात यह थी कि जो घटना नाटक में दिखाई जाए वह वास्तव में उतने समय की हो जितना कि नाटक के अभिनय में लगता हो, उसको वे समय की एकता कहते थे। ऐसा करने में वास्तविक समय का रंगमंच के समय में एक्य हो जाता था। तीसरी बात यह थी कि कथा वस्तु एक रस हो। इस एक रसता को निभाने के लिए प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं मिल सकता था। इस नियम को कार्य की एकता कहते थे। ये तीनों बातें यूनानी रंगमंच की आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप थी। यहाँ के नाटकों में दृश्य नहीं बदले जाते थे। सामूहिक गान द्वारा, जिसको वे चर्स कहते थे, दो दृश्यों में अंतर डाल दिया जाता था। वही पर्दे का काम करता था। उनके रंगमंच पर वास्तव में स्थान बदलता नहीं था, इसलिए वे स्थान की एकता पृष्ठ 70 पर जोर देते थे। यूनानी नाटक आजकल के नाटकों की भांति 2 या 3 घंटे के नहीं होते थे। वे बड़ी देर तक अर्थात प्रायः दिन भर से भी अधिक चलते थे, इसलिए वे समय की काट छाट में विश्वास नहीं रखते थे। कार्य की एकता वैसे तो नाटक की प्रधान आवश्यकताओं में से है। इससे नाटक की उच्च श्रृंखलता नहीं आने पाती, किंतु उन्होंने इसे एक अनुचित सीमा तक पहुंचा दिया था। यह उनके अनुकरण प्रधान आदर्श के अनुकूल था। रंगमंच और वास्तविक घटनाओं में भेद नहीं रखना चाहते थे, किंतु कला अनुकरण मात्र नहीं है, उसमें चुनाव रहता है। प्रभाव के लिए घटनाओं को व्यवस्थित रूप में रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसी घटना को समझने के लिए उसके पूर्व घटी हुई बातों का बतलाना भी आवश्यक होता है। नाटकों में केवल विवरण से काम नहीं चलता, उसमें क्रिया और प्रत्यक्ष अभिनय का अधिक मूल्य होता है। पूर्व की घटनाएं सब एक ही स्थल में घटित नहीं होती। आजकल का समाज पहले से अधिक पेचीदा है। हमारे संबंधों का जाल बहुत दूर तक फैला रहता है। ऐसे समाज में स्थल की एकता का नियम निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए पट परिवर्तन का साधन भी अच्छा है। पर्दे के साथ साथ ही वातावरण बदल जाता है। आजकल तो बिना पर्दा उठे ही सभी वातावरण और का और हो जाता है। फिर आजकल के लोग स्लैक की क्यों परवाह करने लगे। संस्कृत नाटकों में भी स्लैक की परवाह नहीं की गई। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट के सिवाय और किसी नाटक में इन नियमों का निर्वाण नहीं हुआ। मिल्टन के सैमसन एग्नोस्टिस में यूनानी आदर्शों का पूर्णतया निर्वाह हुआ है। संस्कृत नाटककार स्थल बदलने के लिए नाटक की के भीतर भी पर्याप्त व्याख्या रखते थे। उत्तर रामचरित में श्री रामचंद्र जी अनायास ही दंडक बन नहीं पहुंच जाते। नाटकीय प्रभाव के लिए श्री रामचंद्र जी का दंडक बन जाना आवश्यक था, किंतु इस नियम की अवहेलना करने का यह अभिप्राय नहीं की है कि चाहे जैसे दृश्य रख दिए जाए, एक अंक के भीतर ही एक साथ लाहौर और न्यूयॉर्क के दृश्य रख देना ठीक नहीं, क्योंकि वहां पहुंचने में भी समय लगता है। राम को दंडक वन भेजने के लिए नाटककार को शंभू की कथा लानी पड़ी। संस्कृत नाटकों में काल संकलन का नियम किसी अंश में पाला जाता था। एक अंक में वर्णित कथा एक दिन से अधिक की होने का निषेध है और दो अंकों के बीच में एक वर्ष से अधिक का व्यवधान वर्जित था। पीछे के नाटककारों ने, जिनमें शेक्सपियर भी था, इन नियमों का पालन नहीं किया। यद्यपि अपने यहाँ यह नियम बड़ा कड़ा था। वर्षादुद्वम न तु कदाचित नाट्यशास्त्र तथापि इस नियम की भी उत्तरांचरितम में अवहेलना हुई। पहले और दूसरे अंक के बीच में ही 12 वर्ष का व्यवधान है, किंतु इस अंतर को नाटककार ने बड़े कौशल के साथ दिखाया। प्रश्न 71 है, आत्रेयी द्वारा बालकों के 12 वर्ष का हो जाना बतलाया है, हाथी के बच्चे की उम्र से भी समय का भान कराया गया है। श्री रामचंद्र जी पूर्व परिचित ऋषियों को देख कहने लग जाते हैं कि ये गिरी पर्वत और नदियां तो वे ही हैं। बहुत दिन पाछे विपरीत चिन्ह देखन सो या को भिन्न वन संख जी आवे हैं, जहां के जहां पे किंतु अचल अचल हेरी सोई पंचवटी विश्वास ये दृढ़ावे हैं। सत्यनारायण कृत उत्तरांचरित के अनुवाद से उद्धृत इस उक्ति के यह पंचवटी वही है द्वारा समय का व्यवधान कुछ घटा हुआ सा प्रतीत होने लगता है। आचार्यों ने व्यायोग और समय समवकार में आने वाली घटनाओं के लिए काल निश्चित कर दिया था। कार्य की एकता हर समय के नाटकों में एक आवश्यक तत्व रहता है, किंतु एकता का मतलब शुष्क वैविध्यहीन एकता नहीं। प्रासंगिक घटनाओं का बिल्कुल बहिष्कार कर नाटक में एक रस्ता लाना उसके महत्व को कम करना है। वैविध्य में ही एकता का महत्व है। एक रस्ता से तो जी उग जाता है, अनेकता में एकता स्थापित करना वस्तु को संगठित बनाना है। बिना अवयवों के संगठन कैसा? सूखे शहतीर की सी निर्वयव एक रसना निर्जीव हो जाती है। हरे भरे वृक्ष का सा वैविध्यपूर्ण स्कंद शाखा में एक के ही दर्शकों के लिए नयनाभिराम होता है। रोमांटिक स्कूल के लोगों ने स्थल और समय की एकता की अवहेलना की और कार्य की एकता को उन्होंने ऊपर के बतलाए हुए व्यापक अर्थ में लिया। रोमांटिक स्कूल वालों में और अभिनय प्राचीनतावादियों में एक बात का और अंतर था, वह यह कि अभिनय प्राचीनतावादी संस्कृत नाटककारों की भांति मंच पर मृत्यु आदि के घोर दृश्यों का दिखाया जाना वर्ज्य मानते थे और उसका अभिनय नहीं करते थे। वे उस घटना के हो जाने की सूचना किसी पात्र द्वारा दिला देते थे। घोर और उग्र घटनाएं रंगमंच से बाहर हुई संचित जाती थी और उनका उल्लेख हो जाता था। रोमांटिक लोग घटना को मंच पर घटती हुई दिखाना अधिक पसंद करते थे। शेक्सपियर इन्हीं रोमांटिक विद्रोहियों में से था। वह घोर और उग्र प्रकार की घटनाओं को स्टेज पर दिखलाने में नहीं चूका। शेक्सपियर के नाटकों का विषय अधिकतर अभिजात वर्ग का जीवन रहा। शेक्सपियर ने ट्रेजडी कॉमेडी दुखांत का पार्थक्य भी मिटा सा दिया, अर्थात यह नहीं माना कि ट्रेजडी के साथ कॉमेडी का योग न हो सके, अथवा इसके विपरीत सुखांत नाटकों में करुणात्मक दृश्यों का समावेश न हो। मर्चेंट ऑफ वेनिस में करुणात्मक दृश्यों का सुखद सम्मिश्रण है। एप्सन का प्रभाव। यूरोप के ड्रामों का इतिहास बड़ा पेचीदा है। शेक्सपियर के बाद नाटकीय आदर्शों में बहुत सा घात प्रतिघात होता रहा। आधुनिक समय के नाटकों पृष्ठ 72 के बारे में दो एक शब्द कहकर इस प्रसंग को समाप्त कर दिया जाएगा। आधुनिक नाटकों पर सबसे अधिक प्रभाव नॉर्वे निवासी इब्सन का है। इब्सन द्वारा नाटकीय आदर्शों में कई परिवर्तन हुए, उनमें 5 बातें मुख्य हैं। पहले यह कि नाटकों का विषय ऐतिहासिक न रहकर वर्तमान समाज और उनकी समस्याएं हो गया। यद्यपि मानव जीवन की समस्याएं शाश्वत हैं, तथापि वे युग के अनुकूल बदलती रहती हैं। प्राचीन युग में नवीन समस्याओं का अवतरित करना उचित नहीं है। हमको अपने निकट का जीवन अतीत की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगता है, इसमें मतभेद हो सकता है। दूसरी बात यह है कि नाटक का विषय अभिजात वर्ग में ही सीमित नहीं रहा। साधारण कोटि के लोग मानव रुचि का विषय बन गए। बहुत सी सामाजिक समस्याएं साधारण कोटि के लोगों में केंद्रित रहती है। तीसरी बात यह है कि नाटकों में व्यक्ति व्यक्ति के द्वेष की अपेक्षा सामाजिक संस्थाओं के प्रति विद्रोह अधिक दिखाया जाने लगा। उनमें युवकों के हृदय में उठते हुए विद्रोह की छाया दिखाई देने लगी, जो सामाजिक बंधन, शील और मर्यादा के आदर्श विक्टोरिया के युग में आदरणीय समझे जाते थे, वे उपेक्षणीय बन गए। चौथी बात यह भी हुई कि बाह्य संघर्ष की अपेक्षा आंतरिक संघर्ष को प्रधानता मिली। पांचवी बात यह थी कि स्वगत कथन आदि कम हो गए और नाटक स्वाभाविकता की ओर अधिक बढ़ा। इंग्लैंड में गॉल्सवर्दी, बर्नार्ड शॉ आदि नाटककारों पर इब्सन का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। इसके कारण रंगमंच वास्तविक स्थिति के अधिक अनुकूल हो गया है। इसलिए रंगमंच के संकेतों में जरा जरा सी बात का ब्यौरा दिया जाता है। इसका प्रभाव अपने यहाँ के नाटकों पर भी पड़ा है। देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंददास, भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, पंत जी आदि के नाटक। अन्य प्रवृत्तियाँ। यूरोप में इब्सन के ही नाटकीय आदर्शों की इतिश्री नहीं हो जाती है, यथार्थवाद की प्रतिक्रिया भी चल रही है। क्षणिक समस्याओं को छोड़कर मानव जाति की चिरंतन और मौलिक समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। कवित्व और प्रतीकवाद को स्थान मिल रहा है। प्राकृतिक घटनाएं मानवीय समस्याओं की प्रतीक बन जाती है। यह एक प्रकार की अनुक्ति पद्धति है। मेटरलिक आदि नाटककारों के ने गंभीर आध्यात्मिक विषयों का विवेचन ही अपना मुख्य ध्येय बना रखा है। वे आध्यात्मिक संघर्ष को नाटक के रूप में घटित दिखाते हैं। आजकल के कुछ नाटकों में कल्पना की भी उड़ान रहती है। पंत जी की ज्योत्सना में इस प्रवृत्ति का प्रभाव है। सेठ गोविंददास के नाटक प्रकाश में 60 के चीनी के बर्तनों की दुकान में घुस जाने की बात है। बात जो प्रारंभ में दी है वह भी एक प्रकार का प्रतीकवाद ही है। स्वयं प्रकाश ही वह साढ़ है।